ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति गुड गुड मॉर्निंग ॐ शांति भवन का ये सुंदर नजारा हम तो यही कहेंगे सुंदर नजारा भले परिवर्तन हो रहा है लेकिन ओम शांति भवन के जो वाइब्रेशंस है और खास करके जब हम बाबा की मुरली सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं उसका नजारा और इसका फीलिंग कुछ और ही होता है। तो बहुत सारी बातें याद भी आती हैं पहले पहले की जो ओम शांति भवन ने हम सभी ने अनुभव किया है बाप दादा के साथ दादियों के साथ अपने आपस के भाई बहनों के साथ। और ऐसे लगता है जैसे कि समय की घड़ी बहुत तेज चल रही है। वैसे तो बाबा के तेज जू मिसल चल रहा है लेकिन कभी कभी लगता है बहुत तेज चला गया और बाकी का समय भी जो है बहुत अमूल्य है। तो ओम शांति भवन बहुत सारी बातें हमको अनुभव कराता है। आज के बाबा की मुरली सुनेंगे 28 अक्टूबर की। बाबा का जो मुख्य लक्ष्य होता है बाबा की मुरलियों में ऐसे तो बहुत सारे लक्ष्य हैं, मुख्य लक्ष्य एक होता है कि मेरा परिचय मेरे बच्चों को अच्छी तरह से मिल जाए। शिव बाबा का जो परिचय है वो तो हमको देते ही हैं। और वैसे तो कहते हैं कि बाकी सबको भूल भी जाओ लेकिन वो कहते हुए भी बाबा कईयों का परिचय दे देते हैं मुरली में ज्ञान सहित। जिस किसके साथ हम भक्ति में जुड़े हुए थे दिल लगी हुई थी श्रद्धा थी उन सब से बुद्धि हटाना कोई मासी का घर तो नहीं है राइट। भले शिव बाबा का परिचय मिल भी जाए लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब तक कंपैरिजन कंट्रास्ट नहीं होता है तब तक एकदम बुद्धि हटती नहीं है, फिर भी बार बार उनके प्रति जाता है। तो आज मुरली पढ़ते सुनते यही अनुभव हुआ कि बाबा को कितना ख्याल है कि बुद्धि को कैसे कहां से छुड़ा करके अपने आप से जोड़ना। तो उसके लिए तो उसका भी ज्ञान चाहिए जिसके साथ पहले जुड़े हुए थे जो भक्ति में थे पूजन करते थे। और दूसरा ये भी लक्ष्य होता है कि वो सब कौन है, खुद का ही तो परिचय है तुम आत्माएं तो ऐसे सब थे। तो बाबा का बहुत इंटरेस्टिंग यू नो कर्तव्य है मुरली सुनाने के द्वारा कितना कुछ कर देते हैं, खुद का परिचय अनेकों का परिचय इंक्लूडिंग कि हम सबका व्यक्तिगत खुद का परिचय। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं मीठे बच्चे। तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है और फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। समझते हैं ना सभी गायन क्या होता है पूजन क्या होता है, किन की पूजा होती है किन की गायन होती है। गायन से शुरू करते हैं फिर एंड में पूजन तक पहुंचते हैं। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? कौन सी बीमारी और कितने समय की बीमारी? जितना समय लंबा होगा बीमारी का, उतना कहेंगे कि जड़ को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? हमेशा लोग कहते हैं कि ये अभी बिगिनिंग है, यू नो, कोई भी बीमारी का ये बिगिनिंग है ना, अभी इलाज कर लो, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और लंबा समय चला तो ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है? सबको आ गया ना आंसर, कौन सी बीमारी है? एक तो बाबा कहते हैं देह अभिमान की बीमारी, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। महारोगी, साधारण रोगी नहीं, महारोगी। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। सबसे पहले तो सभी को दिल पर चढ़ने का, अंदर में है ना दिल, और चढ़े हुए बैठे हैं, क्या कहेंगे? अगर थोड़ा बहुत नीचे उतरते भी हैं तो फिर से चढ़ना है। वो कैसे? इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। तो ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। और दूसरी बात, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। भगवान के दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। ज्ञान चिता पर बैठो। रूहानी सेवा में लग जाओ। और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो और रूहानी सेवा में लग जाओ। वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। और गीत है मुरली का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, ऐसा है ना गीत। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। तन की तो है ही महिमा, फिर मुख की महिमा बहुत है ना भक्ति मार्ग में। इस मुख से कहा और बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी ये रावण की राजधानी है, तन भी पराया है। शिव बाबा ने जिनका आधार लिया तन, वो भी पराया है। क्यों पराया? क्यों कहते हैं बाबा इस तन को? बाबा का तो हक है ना, ब्रह्मा बाबा ने तो पूरा दे दिया कि आप जैसे चाहे वो यूज करो। फिर भी बाबा कहते हैं पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। उस शरीर को चलाने वाली खुद की आत्मा है और मैं तो पराया आया हूं, तो तन मेरे लिए पराया हो गया। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूं। अपना तन होता, शिव बाबा का अपना तन होता तो क्या होता? उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं है। अगर खुद का शरीर हो तो तुरंत आत्मा के साथ शरीर का भी नाम जुट जाता है ना। तो ये तो ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा ही है। तो अगर तन दूसरा अपना होता तो उसका तो नाम पड़ता, हमारा नाम तो बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं, नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया, जाग सजनिया जाग। मैं समझती हूँ ये पहले रोज बजता था ना सुबह के टाइम में, दादी कहती थी, और इसी गीत के ऊपर उठते थे। आज जैसे अमृत वेले का गीत बजता है ना, ऐसे जाग सजनिया जाग ये रोज बजता था। तो बाबा कहते हैं गीत तो रोज बच्चे सुनते हैं, नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहेंगे, कहते हैं जागो, गीत में किसको कहा है जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है। साधारण नींद नहीं है, घोर नींद है, अंधियारे की नींद है, घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं, और अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो। बाबा आए हैं जगाने, और जागना माना सबसे पहले तो बाप को पहचानना, बाप को जानना। तो अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। पूरा परिचय जब मिल जाता है, बिंदु है, शिव बाबा है, वो तो ठीक है, लेकिन उनसे बेहद का सुख मिलता है, और वो भी कब? नव युग में। सारा युग बदल रहा है। सतयुग को नया कहा जाता है, और कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते, कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। छोटे बच्चे थे तो पूछते थे ना बड़ों से, ये कैसे होता है, कितना लंबा समय का होता है, कितना समय पहले ये सब थे, तो चुप चुप करते थे हमको। ये सब नहीं पूछा जाता है, राइट? तो कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे आज बाबा जगदम्बा और लक्ष्मी की कंपैरिजन कंट्रास्ट कर रहे हैं, जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक ही होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है, अव्यभिचारी यादगार शिवलिंग, राइट? अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। ये है जगत अम्बा, और लक्ष्मी है जगत की महारानी। सो जगत अम्बा कौन है? जगत की अम्बा, और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कभी कोई जान नहीं सके, क्योंकि मूर्ति तो भले हम कहेंगे स्वयं आत्मा है, लेकिन मूर्ति तो बहुत अलग अलग है ना। जगत अम्बा की कैसी शक्ल और लक्ष्मी जी की कैसी उनकी सजावट, बिल्कुल अलग। तो बाबा कहते ये है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कभी कोई जान नहीं सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को क्या कहेंगे? लक्ष्मी को देवी देवताओं में आ जाएगा ना वो तो, और जगत अम्बा को किस वर्ण में रखेंगे? जगत अम्बा को किस वर्ण में रखेंगे? अभी की बात चल रही है ना। अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे, ब्रह्मा, ये सब वर्ण है ना, बताए हैं। तो देवी देवता वर्ण में आता है लक्ष्मी नारायण, और जगत तंबाकू फिर ब्राह्मणी कहेंगे, और ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते, जैसा है वैसा है, उस रूप में किसी भी किसको भी पता नहीं है कि इस समय पर ऐसे जगदम्बा का पार्ट था, ब्राह्मणी थी, जगत के लिए माता बनी, वो सब तो किसी को पता नहीं है। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। पुरुषोत्तम सृष्टि, नवयुग की सृष्टि क्या है? पुरुषोत्तम सृष्टि। और पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। नहीं, कितनी महिमा होती है, फलाने बहन ने हमको ऐसा सुनाया, ऐसे हमको ज्ञान मिला। कितनी गायन हो सकता है आपका, लेकिन पूजन नहीं हो सकता है। भले उनका दिल होगा पूजन करने का, पैर छूने का, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुषोत्तम आत्मा और शरीर दोनों जब पवित्र बनते हैं तभी पूजन होती है ना। सेवा कर रहे हो फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अंबा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। अंबा को कितने देते हैं भुजाएं? वो भी अलग अलग देते हैं मैं समझती हूँ, लेकिन ब्रह्मा को हजार तक तो जाते हैं, और अंबा को भी कई सारे देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी तो हजार देने चाहिए। उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं। बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सत्युग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण का जो स्टेटस है सत्युग में, उस समय कोई उनको जगत पिता जगत अम्बा जगत माता के रूप में नहीं मानेंगे। भले माता पिता का रोल वहां भी प्ले करेंगे, राइट, बेहद के रूप में अन्नदाता है, यू नो, दातापन के संस्कार हैं, सबको खुश राजी यू नो देखना चाहते हैं, लेकिन वो सब नेचुरल रूप में। उनको अभी उस रूप में नहीं कहेंगे कि जगत माता है जगत पिता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना हमेशा वहां तो एक ही पिता है। कौन सा? सत्युग में लौकिक पिता, दूसरे पिता की तो जरूरत नहीं है, सब कुछ मिला हुआ है उस पिता से माता से। तो इसको तो लक्ष्मी नारायण को तो महाराजा महारानी कहेंगे, लेकिन जगत पिता जगत माता वहां नहीं कहेंगे। प्रजा पिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है। जगत पिता और जगत माता भी एक ही है, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिता ही बच्चे पैदा करते हैं तो हद के प्रजापिता ठहरे। जो जो भी यहाँ के पिता हैं उनको भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता कह सकते हैं, लेकिन हद के, क्योंकि उनके बच्चे भी तो उनके प्रजा है ना। अब ये है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप, बेहद का बाप। तो ये भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। किसके बच्चे हो आज? बाबा के और अम्बा के, दोनों के, बाबा के बच्चे हैं। मम्मा बाबा दोनों कहते हैं ना। ये रचना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती और उनको अम्बा कहते हैं। ब्रह्मा सरस्वती का भले नाम साथ साथ लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप हमको अभी पता चला है कि सरस्वती भी प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, और उनको फिर अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियां, बाकी हम सबका एक ही रिश्ता होता है, बच्चे बच्चियां भाई बहन, लेकिन एक है हमारे माता पिता प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती हमारे मम्मा है, सब एडॉप्टेड। अब इतने सब बच्चे कहां से आ सकते हैं, सभी के सभी बच्चे हैं, कोई पूछे कोई सुने तो क्या कहेंगे, इतने सारे बच्चे कैसे हो गए, कहां से आ सकते हैं। एक ही तरीका है ना, सब बच्चे हैं क्या है, मुख वंशावली, मुख से पैदा हुए, ज्ञान से पहचान मिली है हमारे माता पिता की भी अपने खुद की भी, ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया, कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं, तो ये सब है एडॉप्शन। ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना, बाकी सबके लिए भी बाबा कहते हैं जो स्त्री होती है वो भी अडॉप्टेड ही है ना, वो भी स्थूल की तो नहीं है लेकिन अडॉप्शन से स्त्री बनती है, उनके द्वारा फिर बच्चे होते हैं, लेकिन ये अभी है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है, आत्माएं तो है ही ओरिजिनल, हमारा रिलेशनशिप कभी भी बदलता नहीं पिता और बच्चों का, इसलिए तो कहते हैं अविनाशी मैं बाप हूं। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो है ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूं, अभी संगम युग पर जबकि शिव बाबा को आना होता है परिचय देने के लिए, तब आकर के फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। बच्चों को आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करते, खुद के जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनको अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो है ही, बच्चे और बच्चियों को करते हैं, राइट, ब्रदर्स एंड सिस्टर भाई बहन कहते हैं ना, इसलिए बच्चे और बच्चियों को अडॉप्ट करते हैं। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं, इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। इतनी सूक्ष्म बातों को समझने से हमारे आपस का रिश्ता क्या है, अभी चाहे कोई भी रिश्ता कहां का भी हो कितना भी हो, लेकिन एक ही एक ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं ना, हम आपस में भाई बहन है, ऐसे हमारा पवित्र रिश्ता है, नाता है एक दूसरे से। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं, क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने, इसमें क्या जादू है कि विश्व के मालिक बन गए। तो सिर्फ ये जाना कि हम सब भाई बहन हैं, लेकिन भाई बहन समझने से कितनी हमारे जीवन में पवित्रता की एक जैसे की लहर आ गई, तो उसी के आधार से हमारे सब कर्म होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने, तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली, क्या किया, हमला किया किसी के ऊपर, झगड़ा किया, क्या किया कि सारे विश्व की राजाई ले ली, तुमको अभी मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते, जिनमें देवी गुण होंगे इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे वो समझा सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ किसी को कुछ काफी सारी बातें हैं ना सब पैचअप करने के लिए। तो बाबा कहते हैं इसमें क्या चाहिए, एक तो इंटरेस्ट चाहिए रूहानी सर्विस के लिए, और दूसरे दैवी गुण होंगे, खुद में ऐसी शक्ल होंगी, ऐसी बिहेवियर होगा तो हम कहेंगे तो मानेंगे भी, राइट, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं या हम लक्ष्मी नारायण बनने वालों के बच्चे हैं, ये भी तो कहने के लिए मुख चाहिए ना, वो शक्ल चाहिए, जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, देह अभिमान का भी रोग है। या तो योग में रहेंगे या तो रोग संभालते रहेंगे, रोग के बच करते हैं, इस रोग को कैसे संभाल के रखना। देह अभिमान का भी एक रोग है ना, इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है, इन विकारों ने ही तुमको क्या से क्या बनाया है, एकदम जो इतने ऊंच थे, विश्व के महाराजा महारानी थे, सुख शांति की राजधानी में थे, इनको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूं, तुम सर्व गुण संपन्न पवित्र थे। पहले तो पवित्रता की बात बाबा ने बताई, कैसे किसके आधार से तुम पवित्र जीवन जीते हो, पवित्र कर्म करते हो, फिर सर्व गुण भी आ जाते हैं। तुम सर्व गुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की बात नहीं, ये है समझाने की बात। बाबा जो जो बातें बताते जाते हैं किसके लिए, समझ के लिए, दूसरी तरह की समझ जो हमको पहले नहीं थी। तो बाबा कहते हैं ये निंदा की बात नहीं है, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है, यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। भारत की महिमा भी अपरम अपार क्यों है? बाबा कहते हैं यहाँ बाबा आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं, तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो, एक बाप का अगर महिमा पता चल गया तो उसके पीछे जो जो सभी बने हैं सब का तुम कॉन्ट्रास्ट भी बता सकते हो, कि इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगदम्बा की बायोग्राफी और ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। जब शिव बाबा आते हैं उसके पहले, जब आते हैं, जब अडॉप्ट करते हैं तभी की बायोग्राफी, और फिर जब फाइनली बन जाते हैं तब लक्ष्मी की बायोग्राफी। वो ही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगदम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए, चित्र से क्लियर होता है ना, ये ऐसे ऐसे थे और ऐसे बन गए, ऐसे थे ऐसे बन गई, कैसे बन गई, तो एकदम साफ नजर आता है तो अच्छा लगता है लोगों को। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई, कहां कलश, ज्ञान का कलश कहो, धन का कलश कहां से मिल, वो तो सतयुग में हुई है ना, लक्ष्मी को तो सतयुग में दिखाते हैं, तो लक्ष्मी को सतयुग में कैसे कलश मिला। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं, बाकी सचमुच तो कलश जगदम्बा को मिला, ज्ञान का कलश। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकरर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना भी सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। दिल पर चढ़े, बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए क्या विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो बहुत विशाल, शिव बाबा को कैच करने के लिए बुद्धि चाहिए ना, शिव बाबा की बुद्धि और ज्ञान तो इतना विशाल है, तो और फिर उनको उनसे फिर कैच करने के लिए और भी विशाल बुद्धि चाहिए। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। कैसे, जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, श्री बाबा को ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। एक रीति से देखा जाए तो ज्ञान की इतनी महिमा है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी सिर्फ वाणी चलाने से नहीं, लेकिन उसको सोच के समझ के याद के द्वारा उसको महीन बना के दूसरों को समझाने की रीति से समझाए, उसके ऊपर है बाबा के दिल पर चढ़ना। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ते नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। तब तक कुछ न कुछ हिस्सा देह अभिमान का अगर रहा हुआ है तो वाणी तो चलती रहेगी, लेकिन बाबा के दिल पर चढ़ने की बात जब आती है तो उसके लिए क्या चाहिए? स्थिति। ऐसे योग की स्थिति देह अभिमान जरा भी न हो, अंश मात्र भी। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन तो हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद भी पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना। उसको भी बाबा क्रेडिट्स देते हैं, इतना कुछ मेहनत कम बात नहीं है उनके लिए। फिर जो महिमा करते हैं उनकी, प्लेटिनम के वजन करते हैं, वो क्या है? गायन करने की बात है ना, महिमा करने की बात है। भले करे तो मेहनत का भी फल मिलता है, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। उनकी जो मेहनत है उनसे मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई कि गई, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए थोड़े बनाए हैं। कितना भी कोई ट्रीटी करे, ये करे, एग्रीमेंट होवे, लेकिन कोई थोड़े रखने के लिए बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। उनकी तरफ से क्या कहो, विनाश की तैयारी हो रही है बॉम्ब्स के द्वारा, और यहाँ तैयारी हो रही है बाबा के ज्ञान और योग के द्वारा। राज राजेश्वर बनने की तैयारी, डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर, चोटी सबसे ऊपर है ना। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, एकदम नीचे से शूद्र से ब्राह्मण, माना के एकदम चढ़ गए। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। हम बनते जाते हैं पतित से पावन, और फिर जब हमारे में वो ताकत आ जाती है तो तुम भी क्या बनते हो? पतित पावनी बनते हो। बाबा पूछ रहे हैं ये नशा है? पतित पावनी हम हैं। जैसे बाबा वैसे हम। ये नशा है कि हम भी पतित पावनी बन रहे हैं, हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे, अपने दिल से पूछो हम कितने को आप समान बनाते हैं। साधारण रीति से भी देखा जाए तो बाबा कहते हैं अपने सो सेवा की है, दिल से पूछो आप समान बनाने के। बाकी कोर्स तो कईयों को मिलते हैं राइट, तो उसकी बात तो बहुत मामूली से हो जाती है, लेकिन आप समान बनना, पतित से एकदम पावन बन जाना, ब्राह्मण परिवार में आ जाना। बाबा कहते हैं आप कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं, दोनों को आज बाबा समान मान रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों की ऑक्यूपेशन तो सेम है ना, अभी के समय अनुसार ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। कोई है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं? ब्रह्मा के मुख से तो हम सभी पैदा हुए हैं, ब्रह्मा की वाणी जिनको अच्छी लगती है, कितनी स्वीट वाणी सुन करके कई लोग उस समय की बात है कि मम्मा की बातों को सुन करके वो एकदम गिर जाते थे, बन जाते थे बाबा के। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं, ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। तो ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी, राजयोग एक को सिखाया होगा ना। मनुष्यों की बुद्धि में तो फिर अर्जुन और कृष्ण ही हैं, यहां तो ढेर पड़ते हैं। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो, कहां एक और एक की बात, और कहां ये देखो कितनी भारी सभा और कितने ऐसे सारे संगठन सारे विश्व भर में। यहां तो बाबा देखो कहते हैं ढेर पड़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? जीवन की सबसे मुख्य बातें, जीवन जीने के लिए जो जो बात चाहिए, सुख शांति के लिए जो बात चाहिए, निरोगी बनने के लिए जो बात चाहिए, विश्व की राजाई लेने के लिए जो बात है, तो बाबा कहते हैं वो सब तुम पढ़ रहे हो। उसको क्या कहते हैं बाबा? अल्फ और बे। अल्फ और बे, अल्फ और बे, ये है वर्षा। अल्फ को तो जानते हैं और उसके साथ साथ उनके पास से हमको क्या वर्षा मिलता है, ये है बे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। बाबा को याद करते करते कैसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, परिवर्तन होते हैं, संस्कार कैसे बदलते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस आधार से फिर देखेंगे तो काम कर्तव्य अपना कर्म भी देखो। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, देवी गुण धारण करने हैं, देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, प्रार्थना में तो कहते हैं रोज भगवान के सामने। अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण आश्रम एक संस्था बनी हुई है ना, जो अपने को निर्गुण मानते हैं और उसमें ही वो खुश होते हैं, हम निर्गुण हैं। उसको जैसे कि ह्यूमिलिटी के रूप में समझते हैं वो। भगवान में सब गुण होते हैं, हमारे में तो कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई आश्रम भी है, निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है ना। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, बाप के टाइटल की को टोपी उनके ऊपर, जो जो टाइटल है वो सब टोपी अपने ऊपर ले ली है। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं और फिर डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बनाओ, ऐसे कोई पिक्चर बना है, देखा है आप लोगों ने? जगत अम्बा का पिक्चर भी हो, लक्ष्मी का पिक्चर भी हो, दोनों साथ साथ। बाबा ने ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए बोला है। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के, वो तो बने हैं मैं समझती हूँ। तो ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आपस का उनका कौन सा कनेक्शन है, रव संबंध है आपस में। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना ना ब्रह्मा ने भी पहले, तभी वो ब्रह्मा की बेटी बनी। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, दोनों पढ़ते हैं शिव बाबा से मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, सत्युगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते, मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है। मनुष्य इस रूप से कि उनको भी, उनका भी सो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वो सब तो सेम ही है ना, दो हाथ दो पैर। कोई बाबा कहते कभी कभी वो 6 फुट के 7 फुट के तो नहीं होते, लेकिन थोड़ी लंबाई ज्यादा होगी, लेकिन है तो मनुष्य ही। फिर भी मनुष्य साधारण कहने से तो जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, देवी देवता हैं इसलिए वो कहते हैं, भले कहने मात्र उनको समझाने के लिए हम कहते हैं मनुष्य आत्मा ही ये बनती है, मनुष्य आत्मा ही वो बनती है, लेकिन फिर साधारण रूप से उनको मनुष्य नहीं कहते लेकिन देवी देवता कहते। मनुष्य कहने से जैसे कि उनकी इंसल्ट हो जाती है, और ही बिगड़ेंगे हमारे ऊपर राइट लोग वैसे भी हमारे ऊपर बिगड़ते हैं ज्ञान की बातें सुनकर, लेकिन उनको देवी देवता का टाइटल जरूर देना चाहिए। इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। जैसे राजा वैसे प्रजा, वो खुद ही भगवान भगवती जैसे उनका नेचर है, मूर्त है, सूरत है, सब कुछ है, तो उनके प्रजा को भी वही कहेंगे देवी देवता। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, सत्युग में इतने थोड़े मनुष्य और कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वो कैसे समझाएं कलयुग में इतने सारे मनुष्य और फिर सत्युग में इतने थोड़े मनुष्य, किसी को आंसर है कैसे समझाएं उनको, विजुअली कैसे समझाएं, कौन सा चित्र चलेगा उनके लिए। कलयुग से सत्युग बन जाता है, एकदम ऐसे पलट जाता है, घड़ी बदल जाती है, टाइम बदल जाता है, क्या कहेंगे। इसके लिए चाहिए गोला, गोला भी जरूर चाहिए, इस समय में ऐसा है, इस समय में ऐसा है, इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है उस समय की बात है ना, अभी तो बहुतों की सेवा हुई है, तो कस्टम कलेक्टर को बाबा आज याद कर रहे हैं उस समय के, तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा को बहुत अच्छा लगता था, कोई नई नई इन्वेंशन बनती थी, नई नई आइडियाज आती थी, किन किन की सेवा करें, कैसे करें, उसके लिए कोई लेके आता था, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए, हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता और घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है और उनका श्रृंगार देखो कितना बड़ा है, छोटी सी बिंदी और उनका श्रृंगार देखो कितना बड़ा है। ये अकाल मूरत का तख्त है ना, सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूं, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे, एक तन में आकर के, एक ही शरीर में आकर के, एक ही के द्वारा मैं राजयोग सिखाता हूं, रचना रचता हूं, फिर मैं सर्वव्यापी कैसे हूं। बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे, बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है, टीचर कैसे सर्वव्यापी हो सकता है और गुरु कैसे हो सकता है, फिर तो एक ही कंफ्यूजन हो जाए राइट। बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं, फिर ज्ञान सागर हूं, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा और देवी गुण भी धारण करने चाहिए। ये सब पढ़ाई है ना, बाबा पढ़ाते हैं आकर के एक और एक के द्वारा पढ़ाते हैं, तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, पढ़ते पढ़ते चलते चलते बाबा कहते हैं दूसरी तरफ की जो जोर पकड़ लेती है माया भी, माया भी एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया, यहां तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं, मुख्य धारणा यहाँ की पवित्रता की है, तो उसमें अगर फेल हो गए तो फिर बाप भी क्या कर सकते हैं। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं आजकल तो नहीं कहते होंगे मुख से, मतलब बड़े जोर से, तुम तो मर जाते तो अच्छा है। कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैरान करने वाले होते हैं, तो निकल जाता है मुख से, मतलब कहने का मतलब नहीं होता लेकिन मुख से निकल जाता है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं फिर भी कहेंगे तो सही ना, बाबा के मुख से ऐसे तो नहीं निकलेंगे लेकिन फिर भी बाप को इशारा तो देना पड़े, डायरेक्शन तो देना पड़े, सावधानी देनी पड़े, सुधारना पड़े। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते भी हैं फिर भी कहेंगे तो सही ना, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो हजार गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया, माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। एक तरफ देखो विशाल बुद्धि और दूसरी बुद्धि माया का असर होता है तो एकदम गुम कर देती है, जैसे अकल पहले था वो तो जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं, आंखें बड़ी जोकेबाज है। फिर से बाबा का ये इशारा हमेशा मिलता है, कहां से शुरुआत, माया कहां से पकड़ती है, आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्यों? तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, कलयुग के बीच में रह करके ये संगम युग जो चल रहा है, सारों और कलयुग चल रहा है और तुम थोड़े संगम युग हो, तो युद्ध का मैदान है ना, ये दो तरफ है आपको चूज करने का, हमेशा कलयुग की तरफ जाना है सत्ययुग की तरफ जाना है, तो युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा, इतना अचानक आ जाती है, फटाफट अपना काम कर लेती है माया। माया झट थप्पड़ लगा देती है, अभी तुम कितने समझदार बनते हो, समझदार बनते हो, समझदार माना कि उस घड़ी वो समझ काम में आए, पता चल जाए कि ये माया का काम है, मेरे को इसके वश नहीं होना है। कभी तो छोड़ देते हैं या आलस आ जाता है, अलर्ट नहीं रहते, लेकिन समझदारी का काम है अलर्ट पे रहना, इतना ही। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझ और बेसमझ का कॉन्ट्रास्ट भी देह अभिमान और देही अभिमान स्थिति के साथ लगता है, बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही है। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो, आंखों की बात चली और फिर कानों की भी बात इतनी ही इम्पोर्टेंट, कोई भी विकार की बात भी इन कानों से नहीं सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी मंजिल विश्व के महाराजन महारानी देवी देवता बनने की, और कहां बैठ करके हमको सीखना होता है, एकदम की चटपट्टी में, कभी कभी तो कलयुग के एकदम बीच में रह करके, तो बाबा देखो कितना कमाल कर देते हैं, राइट, विश्व भर के आत्माओं के साथ। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है, इतनी इसलिए तो बाबा को छोटी छोटी बातों के ऊपर इशारा देना पड़ता है, राइट, बार बार भी। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा, मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे, देहधारी को याद करना सिखलाते हैं, फिर भी देहधारी को ही याद करेंगे, उनको तो पता ही नहीं है भगवान का सच्चा रूप, सदगति दाता का, मुक्ति दाता का, तो इसलिए देहधारी को ही याद कराएंगे। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, अभी से तुम्हारी तैयारी करवाते हैं, अंत समय तक बाबा नहीं रुकते, कोई भी घड़ी आ सकता है अंत का समय, तो बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है, मां बाप भी देहधारी है ना, मैं तो विचित्र हूं, विदेही हूं, विचित्र हूं, विदेही हूं, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूं। शिव बाबा अपना फिर से बैठ परिचय एकदम क्लियर बताते हैं, मैं कौन हूं, जो बोलने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, विचित्र हूं, विदेही हूं, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूं। वो कह रहे हैं ना, माम एकम, याद करो, तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो और तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। हम क्या कहेंगे, ज्ञान सागर बाप शिव बाबा के द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं, राज राजेश्वरी बनने के लिए, राज राजेश्वरी बनने के लिए अब शिव बाबा से, ज्ञान सागर से हम ज्ञान सीख रहे हैं। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं, राइट। ज्ञान है सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, कौन कब का कैसे कहां, और राजयोग है अभी अभी के बाद, अभी तुमको क्या करना है, इस घड़ी तुमको आत्मा समझकर मेरे को याद करना है, राइट। तो ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। समझदार कब बनने का होता है, युद्ध के मैदान में जब होते हैं तो, क्लासरूम में नहीं होता है। जब तक यहां बैठे हैं, हाँ फिर भी कभी कभी संकल्प चलता है, लेकिन बाहर चलते हैं माया के तूफान आते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ सामना करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी बाबा कहते हैं समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है इसलिए संभाल करनी है। और कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। आज बाबा दोनों डायरेक्शन दे रहे हैं, आंखों के लिए भी और कान के लिए भी। आंखें तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज कानों के पहले प्रति भी बाबा सत्य कहते हैं, कानों से भी नहीं सुननी है कोई भी विकारी बातें। मैं तो सुन ही रहा था ना, वो लोग ही कर रहे थे बात, मैंने कुछ बोला नहीं, फिर भी असर पड़ जाता है ना, बुद्धि तो बहुत नजदीक है कान की। बाद में फिर विचार चलता है, तो इसलिए बाबा कितना चेतावनी दे रहे हैं, कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है, और सुननी भी है तो यहां से निकाल देनी है। दूसरी बात, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। लगातार उसमें तो मेहनत लगती है ना, सिर्फ ज्ञान सुनाया, सारी बातें बता दी, कोर्स पूरा कर दिया, उसकी तो बात नहीं है, लेकिन हर एक छोटी छोटी बात में उनको लाइफ स्टाइल के लिए भी, रोजाने के लिए भी, कि जैसे बाबा बताते हैं हमको वैसे औरों को बताना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं, पावन या राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। जितनी पूरी पवित्रता होगी तभी वो टाइटल मिलता है राज राजेश्वर। तो मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बहुत सारे गुण हो, एक छोटा सा भी अवगुण कितने बार वो अवगुण कितनी बातों को कैंसिल कर देता है, राइट। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, ये सब चेकिंग के लिए, अपने दिल से पूछने के लिए। वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव, ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वस्तिका निकालते हैं, समझ की निशानी स्वस्तिका निकालते हैं, वह गणेश को नमन करते हैं, विस्टम गॉड कहते हैं ना उनको। ये स्वस्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है, स्वस्तिका स्वस्थिति में स्थित होने का और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। नॉलेज को समझ में कन्वर्ट करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाना, बाबा कहते हैं तभी सफलता होती है। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी और इसलिए खुशी का दान करते चलो। बाकी क्या करते हैं मधुबन में, मधुबन निवास वही तो करते हैं राइट, दान का खुशी का लगातार खुला भंडार होता है यहाँ पर। स्लोगन, खुशी का दान, अव्यक्ति शराज का, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। कैमरा वाले पहले पहले क्या करते हैं, लाइट चेक करते हैं राइट। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट यानी कि हल्की स्थिति है। योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार बेसिस जो है आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है, हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। अगर स्थिति, अंदर की स्थिति और बाहर का स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब योग के बाद अनाउंसमेंट करनी है, डबल फॉरेनर्स बैठे रहेंगे। बिफोर दैट, अभी अभी जी, योग पहले